नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM and for you we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. ISRO to launch 2 satellites from Sriharikota tonight to demonstrate docking and undocking of spacecraft in orbit.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा।
पंजाब एंड बिहार पुलिस रेस्क्यू 30 बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम कपूरथला इन अ जॉइंट ऑपरेशन।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कल तक शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी।
इन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 184 रन इन द फोर्थ टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन मेलबर्न।
और हॉकी, इंडिया लीग में आज शाम राउरकेला में उत्तर प्रदेश रुद्रदास का मुकाबला वेदांता कलिंगा लॉन्सर से होगा।
And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about ISRO Space Docking Experiment or SPADEX. Well, we start off our discussion today with the words of Chrystia McAuliffe, who very famously said, "Space is for everybody. It's not just for a few people in science or math or for a select group of astronauts. That's a new frontier out there, and it's everybody's business to know about space."
बिल्कुल, और बज एल्ड्रिन ने कहा है कि अन्वेषण हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित है। यदि हम क्षितिज देख सकते हैं तो हम जानना चाहेंगे उससे परे क्या है।
Yes, an Indian space research organization, ISRO's year-end mission, scheduled for the 30th of December, which is today. It is going to be a historic one as it will seek the rare feat of docking or merging or joining together two satellites in space. The project has been named Space Docking Experiment, SPADEX.
पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है क्योंकि इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। स्पेडएक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग करना है। इस चुनौती को पूरा करने की क्षमता केवल कुछ ही देशों में हासिल है। इस मिशन के लिए उपयोग की जाने वाली स्वदेशी तकनीक को भारतीय डॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। स्पेडएक्स अंतरिक्षयान डॉकिंग प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हुए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।
Space docking involves precise connection of 2 spacecraft, whether manned or unmanned, allowing those to operate as a single unit for critical tasks such as refueling, repair and crew exchange. It enables the construction of cutting-edge facilities like International Space Station in orbit and advancing space exploration. Some spacecraft dock with International Space Station and others berths with the station.
बिल्कुल, डॉकिंग में अंतरिक्षयान स्वयं गति कर सकता है और स्टेशन से जुड़ सकता है। बर्थिंग में एक अंतरिक्षयात्री अंतरिक्षयान को पकड़ने के लिए स्टेशन की रोबोटिक भुजा का उपयोग करता है। फिर मिशन नियंत्रण जमीन से नियंत्रण लेता है और अंतरिक्षयान को अनुलग्नक स्थल तक ले जाने के लिए हाथ को निर्देशित करता है। अंतरिक्ष के निकट शून्य में इसरो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहे 2 उपग्रहों को डॉक करने का प्रयास करेगा। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि दोनों उपग्रहों को अपने सापेक्ष वेग को मात्र 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम करने के लिए सावधानी पूर्वक संचालित किया जाना चाहिए।
Yes, and the 2 satellites designated Chaser and Target will merge to form a single unit in space. And there are phases of SPADEX mission, deployment and far rendezvous. Here the satellites will be deployed simultaneously into orbit with a small relative velocity. Within 24 hours the distance between them will increase to 10 to 20 kilometers and the propulsion system on the target satellite will stabilize the separation, ensuring controlled movement at this range.
बिल्कुल, प्रगतिशील दृष्टिकोण चेजर उपग्रह 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और अंत में केवल 3 मीटर की सापेक्ष दूरी हासिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से दूरी को कम करेगा। उन्नत नेविगेशन सेंसर और एल्गोरिथम चेजर को सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के मार्गदर्शन करेंगे।
लेट्स टॉक अबाउट द डॉकिंग ऑपरेशंस। वंस द सैटेलाइट्स आर विद इन 3 मीटर्स, डॉकिंग विल अकर। दिस इंक्लूड्स प्रिसाइशन अलाइनमेंट टू इंश्योर नो कोलिजंस, सक्सेसफुल लैचिंग ऑफ डॉकिंग मैकेनिज्म्स एंड डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर एंड जॉइंट ऑपरेशन।
बिल्कुल, डॉकिंग और पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करने के बाद उपग्रह अपने स्वतंत्र मिशन शुरू करने के अलग हो जाएंगे। ये मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करने में सक्षम देशों की विशिष्ट लीग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करेगा। एक अद्वितीय दृष्टिकोण, पीएसएलवी रॉकेट इस जटिल उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम से सुसज्जित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा।
The success of this mission is vital for India's future space ambitions, since docking technology is a cornerstone for future space stations and interplanetary missions. Docking technology is a key for long-term missions like Chandrayaan 4 and the planned Indian space station. It is also crucial for the eventual manned Gaganyaan mission.
इसरो की उपलब्धि भारत को दुनिया के अंतरिक्ष नेताओं में शामिल कर देगी, जो कि अधिक अंतरिक्ष अन्वेषण और नवाचार की दिशा में एक कदम है। स्पेसएक्स एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आने वाले वर्षों में और अधिक जटिल अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन भारत की अंतरिक्षयान डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह सर्विसिंग क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Yes, absolutely. And SpaceX will deploy 2 identical satellites, SDX-01 and SDX-02. Each satellite weighs around 220 kilograms and will orbit 470 kilometers above Earth. Key objectives include performing precision rendezvous and docking maneuvers, validating power transfer between docked spacecraft and operating payloads post undocking with 2-year lifespan.
बिल्कुल, SpaceX mission कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का अग्रदूत है, जिनमें शामिल हैं चंद्रयान 4, चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए डॉकिंग तकनीक का संभावित उपयोग, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान कार्यक्रम और भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान पहल का समर्थन करता है, अंतरग्रही अन्वेषण मंगल ग्रह और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए मॉड्यूलर अंतरिक्षयान की आवश्यकता के लिए डॉकिंग तकनीक आवश्यक है, अंतरिक्ष स्टेशन विकास भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में एक कदम, जो अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति को सक्षम बनाता है।
Yes, and the SpaceX will also use PSLV's fourth stage, POEM-4, for experiments. The stage will carry 24 payloads from academic institutions and startups. These experiments will utilize the microgravity environment in orbit. PS-4 orbital experiment module, designated as POEM, refers to the usage of the spanned fourth stage of the Polar Synchronous Launch Vehicle, PSLV. It provides an opportunity for the scientific community to carry out certain in-orbit microgravity experiments for an extended duration of up to 3 months using the POEM platform, which otherwise would end up as space debris immediately after the mission objective of injecting the primary payloads of the mission. And such experimental payloads serve as precursor experiments to validate various proof of concept and enabling technologies for future missions.
बिल्कुल अभिषेक, स्पेसएक्स उपग्रहों के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इसमें बिजली स्थानांतरित करना और वैज्ञानिक पेलोड का संचालन करना शामिल है। ये क्षमता भारत की चंद्र और अंतरग्रही मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। डॉकिंग तकनीक बहु प्रक्षेपण मिशनों को सक्षम बनाती है और भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान का समर्थन करती है। अब तक केवल अमरीका, रूस और चीन ने ही ऐसी प्रगति में महारत हासिल की है। स्पेसएक्स भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले विश्व स्तर पर संभावित चौथे देश के रूप में रखता है।
Absolutely, and the SpaceX mission marks a pivotal moment in India's space exploration journey. And by mastering docking technology, ISRO is not only setting the stage for ambitious future missions, but also cementing India's status as a global leader in space innovation. The development of advanced space technologies by India represents a significant leap forward in space exploration capabilities. And such advancements reflect the nation's commitment to scientific and technological self-reliance and its aspirations to be a front runner in global space research and development in line with the Atmanirbhar Bharat vision.
बिल्कुल, जॉन ग्लेन ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम कर सकते हैं वो है युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना और उस तरह की विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी शिक्षा को आगे बढ़ाना जो युवाओं को हमें अंतरिक्ष यात्रा के अगले चरण में ले जाने में सहायता करेगी।
Absolutely, and so to round off our discussion today on ISRO's space docking experiment or SpaceX, I'd like to leave our listeners with the words of Ray Bradbury, who said, "Space travel is life enhancing, and anything that's life enhancing is worth doing. It makes you want to live forever."
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले कर्नाटक चलें।
Absolutely, we start off with a story from Bengaluru, and as we were just discussing about the SpaceX mission, its powerhouse rocket PSLV-C60 will lift off at 22 hours 15 seconds tonight from Spaceport Sriharikota in Andhra Pradesh. Two satellites, SDX-01, called also as JESA, and SDX-02, called Target, will be placed into a 470 km circular orbit at 55 degree inclination with a local time cycle of about 66 days. Both Target and Chaser satellites separate in space and will be placed in the same orbit at a distance of 10 to 20 kilometers. And let us go for more details from our correspondent Sudhindra from Bengaluru.
SpaceX space docking experiment, once successful, will establish India as the country that can successfully undertake human space flight and satellite servicing missions. This is a cost-effective technology demonstrator mission that will enable India to plan missions to Moon and build its own Bharatiya Antariksh Station, where the satellite can dock and get back to Earth. In space, docking technology is essential when multiple rocket launches are required for common mission objectives. This needs precision in inter-satellite separation, velocity and navigation, transfer of electric power between two docked spacecrafts, composite spacecraft control, and payload operations after undocking. India will be the fourth country to master docking and undocking technology. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
Yeah, I think next we have a story from Thiruvananthapuram.
जी बिल्कुल, और केरल के कोझिकोड में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव नेरा थिंका 24 चल रहा है, तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
The 7-day festival is taking place at the Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Tribes in Kozhikode. The tribal festival features several aspects of the tribal culture such as food, art, literature, medicine and handicrafts. The tribal communities from Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu are taking part in the festival that also includes an ethnic food festival, Oonchal, a tribal literary camp, Billibane, a tribal medicine camp and a tribal dance festival. The State Minister for Welfare of Scheduled Caste Tribes and Backward Classes, O.R. Kelu, inaugurated the festival Nera Thinga 24. The festival started on December 24th and will end today. The food festival showcases the tribal cuisines from the Kani tribe of Thiruvananthapuram, Vettu Kurumar and Kuruchya tribes of Wayanad, along with the Koli Mahadeva tribe from Maharashtra, Toda tribe from Tamil Nadu and Oron tribe from Chhattisgarh and Madhya Pradesh. A major highlight is the preparation of various tubers found in the Western Ghats. The festival is open to the public every day. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
और केरल से अभिषेक, अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को लद्दाख।
In Ladakh, ice hockey is a popular sport and the administration is focusing on it as one of the major sporting events with aim to make Ladakh as a hub of ice hockey. And as part of a series of sporting events on ice hockey, during this winter season, Sports and Youth Service Department, Leh Hill Council, in collaboration with the Ladakh Winter Sports Club, is organizing the 18th edition of the CEC Ice Hockey Championship in Leh since the 28th of this month. And our correspondent Dolma has filed this report.
CEC Ice Hockey Championship has been a significant platform in ensuring grooming of talents of youth in the ice hockey field, as many athletes from Ladakh have been representing the country in international sporting events like Asian International Ice Hockey Federation. Ladakh Women Ice Hockey Foundation has reached today for the final match in this ongoing CEC Ice Hockey Championship by scoring 4 goals against Yak Kanji. Earlier in the men's category, Skara team won the match from the Segmol with 10 goals. The second match in the men's category and the final match of the third day of the championship is being played between ITBP and Segmol. The final match of the ongoing 18th edition of the CC Ice Hockey Championship is scheduled on 3rd January. Yangchen Dolma for Akashwani News from Leh Ladakh.
और अब चलते हैं मुंबई. मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रचा है. तो सुनते हैं रिपोर्ट.
Demonstrating an extraordinary feat of mountaineering prowess, this 17-year-old adventurer has conquered Africa's Mount Kilimanjaro, Europe's Mount Elbrus, Asia's Mount Everest, and culminating the current climb in Antarctica. The young Everester reached the summit of Mount Vincent in Antarctica along with her father, Commander S. Karthikeyan, on December 24 at 17:20 hours Chilean Standard Time to complete the 7 summit challenge. Kamya Karthikeyan was 16 years old when she scaled Mount Everest. She said she was 7 when she took her first trek in Uttarakhand. Her outstanding accomplishments have not only earned her the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar, India's highest national honor for young achievers in 2021, but also accolades for Prime Minister Narendra Modi in his Man Ki Baat. Deepmala Kaushik, Akashwani News, Delhi.
And in business news today, benchmark domestic equity indices today ended with losses of over 0.5%. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, lost 451 points or 0.57% to close at 78,248. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 168 points or 0.71% to end at 23,645. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.2%, down at $73.98 per barrel, and WTI crude also fell over 0.4% to trade at $70.31 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 76,720 rupees for 10 grams, while silver 999 fine is trading up at 88,980 per kilogram when reports last came in. And now for some sports news. In the Hockey India League, UP Rudras will take on Vedanta Kalinga Lancers at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela this evening. The match will start at 8:15 p.m. IST.
और मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया. इस हार के बावजूद भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की संभावना बरकरार है. 340 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 155 रन ही बना सकी. विवादित आउट करार दिए जाने के से पहले भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 84 रन बनाए. कमिंस को श्रेष्ठ बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. उन्होंने 49 रन बनाए और पहली पारी में 3 विकेट लिए थे. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आज सवेरे दूसरी पारी में 9 विकेट पर 234 रन पर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया अब 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है.
Yes, and the News Services Division of Akashvani will bring a special 30-minute program in English tomorrow, 2024, the year that was, the memories that remain. This program can be heard on 100.1 FM Gold Channel and additional frequencies from 8 p.m. onwards. The program will also be available on our website newsonair.gov.in and on our YouTube channels Akashvani AIR and News on AIR Official. And now, Mukesh, we will take our listeners on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 30th of December 1943, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted the national flag for the first time at the Gymkhana ground, now known as Netaji Stadium, in Port Blair, and announced the islands to be the first Indian territory freed from British rule. Netaji named Andaman Islands as Shaheed and Nicobar Islands as Swaraj and appointed INA General A.D. Loganathan as the governor of the islands. The Azad Hind government was no more only a government in exile, but had its own land, own currency, civil code and stamps.
We also remember Jaintia freedom fighter U Kiang Nangba, who was martyred on December the 30th, 1862. Ukyang Nangba was born in Jobai, and unlike other freedom fighters of the region, he had no royal background and was a common farmer. Though he was only a child when the British annexed the Jaintia Kingdom in 1835, he was greatly disturbed by the discriminatory policies of the Britishers. The British initially adopted a policy of least interference and left the Jaintia people almost entirely to themselves for a period of more than two decades. However, by 1860, they started increasing the tax burden on the Jaintias, which created a turmoil amongst them. Jaintias rose up in a fierce rebellion in 1862 under the leadership of young Ukyang Nangba. Nangba emerged as a great organizer and kept his identity secret to avoid arrest.
He managed to outwit the British intelligence service and started gathering all the Doloyis and Sirdars without causing any suspicion. However, the Jaintias were ultimately defeated because of the superior might of the British. In the unequal fight that ensued, hundreds of Jaintias were killed and Ukyang Nangba was betrayed, captured and hanged publicly on December the 30th, 1862. We salute the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter and educationist Kanhaiyalal Maniklal Munshi, who was born on the 30th of December 1887 in Bharuch, Gujarat. He is the founder of the renowned educational institution Bharatiya Vidya Bhavan in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi.
Munshi was a good student and topped his BA and LLB exams. He was influenced by revolutionary leader Sri Aurobindo Ghosh to join the freedom struggle. While practicing law in Bombay, he joined Annie Besant's Home Rule League and met many leading freedom fighters of the time, such as Surendranath Banerjee and Mahatma Gandhi.
In 1927, he was elected to the Bombay Legislative Assembly, but after the Bardoli Satyagraha, he resigned under the influence of Mahatma Gandhi. He also participated in the civil disobedience movement and was imprisoned twice. Munshi was elected again in 1937 Bombay Presidency elections and became the Home Minister of the Bombay Presidency and helped suppress the communal riots in the state.
After independence, Munshi was elected member of the Constituent Assembly of India and worked with several committees, including the Drafting Committee, Advisory Committee, Subcommittee on Fundamental Rights, and the Ad Hoc Flag Committee that selected the flag of India in August 1947.
Till his death in 1971, Munshi remained committed to the nation. We salute this great patriot.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
और अब वक्त हुआ है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को. विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है. इनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई था. उन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज कराई. विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्रों में भी समान रूप से पुरोगामी योगदान दिया. वे अंत तक वस्त्र, औषधि, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे. डॉक्टर साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य दृष्टा उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के प्रवर्तक, एक महान संस्थान निर्माता, एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पारखी, सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी, एक अग्रणी प्रबंधक, शिक्षक और बहुत कुछ थे. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक थी. उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को राजी किया. डॉक्टर साराभाई ने अपने उद्धरण में अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर बल दिया था. उन्हें कई सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि उन्हें 1962 में दिया गया, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण उन्हें मरणोपरांत दिया गया था.
Joseph Rudyard Kipling was born on this day in 1865. He was an English journalist, novelist, poet and short story writer. He was born in British India, which inspired much of his work. Kipling's 39 works of fiction include The Jungle Book Duology, The Jungle Book 1894, and The Second Jungle Book 1895, Kim in 1901, The Just So Stories, 1902, and many short stories, including The Man Who Would Be King, 1888.
और अब बात देश के सुप्रसिद्ध हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार की, जिन्होंने 30 दिसंबर 1975 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली है, वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ये ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गजलों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया था।
लेब्रॉन रेमोंड जेम्स सीनियर वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1984। ही इज एन अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर फॉर द लॉस एंजेलिस लेकर्स ऑफ द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। Nicknamed King James, he is widely regarded as one of the greatest players in basketball history and is frequently compared to Michael Jordan in debates about sports all-time best. James has won 4 NBA championships from 10 NBA Finals appearances, having made 8 consecutive appearances between 2011 and 2018. He also won the inaugural NBA Cup in 2023 with the Lakers, 3 Olympic gold medals as a member of the US national team and the Olympics MVP in the 2024 Summer Olympics.
और अब जानकारी रघुवीर साहे के बारे में, जिनकी गणना हिंदी साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। रघुवीर साहे एक प्रभावशाली कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक भी थे। वो प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी अन्य पुस्तकें आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में भी काफी चर्चित रही हैं। साहे का संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बढ़ी थी। साहे ने उन्हीं आकांक्षाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया था। साहे की गिनती ऐसे कवियों में भी की जाती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने के बजाय भविष्योन्मुखी रहना पसंद करते थे।
Tiger Woods was born on this day in 1975. Tiger Woods is an American professional golfer. He's tied for first in PGA Tour wins, ranks second in men major championship, and holds numerous golf records. Tiger Woods is widely regarded as one of the greatest golfers of all time and is one of the most famous athletes in modern history. He is an inductee of the World Golf Hall of Fame. On August 20, 2007, California Governor Arnold Schwarzenegger and his wife Maria Shriver announced that Woods would be inducted into the California Hall of Fame. He was inducted on December 5, 2007 at the California Museum for History, Women and Arts at Sacramento. In May 2019, following his 2019 Masters Tournament win, Woods was awarded the Presidential Medal of Freedom by President Donald Trump.
और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मृणाल सेन की हम बात करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। मृणाल सेन ने सिनेमा पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें शामिल हैं न्यूज ऑन सिनेमा तथा सिनेमा आधुनिकता। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं नील आकाश, शेर नीचे, पदातिक, इंटरव्यू, जेनेसिस, भुवन शोम आदि।
Patricia Lee Smith was born on this day in 1946. She is an American singer, songwriter, poet, painter, author, and photographer. Her 1975 debut album, Horses, made her an influential member of the New York City-based punk rock movement. Smith has fused rock and poetry in her work. In 1978, her most widely known song, Because the Night, was co-written with Bruce Springsteen. In 2005, Smith was named commander by the French Ministry of Culture. In 2007, she was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. In November 2010, Smith won the National Book Award for a memoir, Just Kids, written to fulfill a promise to Robert Mapplethorpe, her longtime partner.
और अब याद करते हैं 20वीं सदी के महान संत रमण महर्षि की, आज उनकी जयंती है। और उन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचल अरुणाचल पहाड़ी पर गहन साधना की थी और उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को तिरुचली गांव तमिलनाडु में हुआ था और उन्हें केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी शांति ऋषि के रूप में जाना जाता था.
सो विद दैट इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. टिल द नेक्स्ट टाइम दिस इज मुकेश एंड मी अभिषेक मुखोपाध्याय साइनिंग ऑफ. बाय एंड नमस्कार.